जेसिका ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। और आर्यन, वो अब बहुत लंबे समय तक बाहर नहीं आएगा। विक्रांत के दिमाग में योजनाएं घूम रही थीं, कंपनी को अपने कब्जे में लेने की, बोर्ड को अपने पक्ष में करने की और आर्यन को हमेशा के लिए अंदर रखने की। एक तरफ सानवी बेचैनी और डर में घिरी हुई थी और दूसरी तरफ विक्रांत अपनी अगली साजिशों की बुनियाद रख चुका था। आलिया कैसी है? रिया ने अचानक पूछा। आलिया और रिया इन कुछ दिनों में अच्छी दोस्त बन गई थीं, मगर पिछले दिनों से रिया की उससे कोई बात नहीं हो पाई थी, न कोई कॉल न कोई मैसेज। इसी बेचैनी में रिया ने ये सवाल कर दिया। इंद्र कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, वो चली गई। उसकी आवाज़ शांत थी, मगर उस शांति के पीछे बहुत कुछ दबा हुआ था। रिया ने कुछ कहना चाहा, मगर शब्द गले में अटक गए। उसी वक्त कृति चाय की ट्रे लेकर आ गई। उसने बात सुनी तो ठिठक गई। मतलब, उसने संकोच से पूछा, वो हमेशा के लिए चली गई है, तो अब तुम दोनों के बीच सब खत्म हो गया? इंद्र की निगाहें सामने दीवार पर टिकी थीं। हम दोनों के बीच कभी कुछ था ही नहीं, उसने धीमे स्वर में कहा। मगर उसे लगता था शायद सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज़ में पछतावा नहीं था, बस एक थकी हुई सच्चाई थी। जो रिश्ता होना ही नहीं था, इंद्र ने आगे कहा, उसका ख़त्म हो जाना ही बेहतर होता है। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए दर्द देते हैं क्योंकि हम उन्हें ज़बरदस्ती निभाने की कोशिश करते हैं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सांगवी अब तक चुप बैठी सब सुन रही थी। इंद्र की बातों में उसे कहीं ना कहीं अपनी ही जिंदगी की परछाई दिखाई देने लगी। एक ऐसा रिश्ता जो दिखने में पूरा था, मगर हालात ने उसे अधूरा बना दिया था। रिया ने धीरे से चाय का कप उठाया, मगर उसका मन कहीं और था। ज्ञान ने न्यारा से फ्लैट छोड़ने के लिए तो कह दिया था, मगर उसे साफ तौर पर जाने के लिए कभी नहीं कहा। फिर भी पिछले कुछ दिनों से वो घर में जानबूझकर उससे नजरें चुराने लगा था। जब भी न्यारा सामने आती, ज्ञान किसी न किसी बहाने से कमरे से निकल जाता या चुपचाप अपने कमरे में बंद हो जाता। न्यारा इस बदले हुए व्यवहार से परेशान थी। पहले उसकी परेशानी ये थी कि वो अपने बॉस के लिए खाना क्यों बनाए, उसे अब परेशानी ये थी कि खाना बनाने से मना कर दिया था। आज ऑफिस में एक केस आया था जिसमें न्यारा भी सीधे तौर पर शामिल थी। पूरा दिन उसी केस में उलझा रहा, मगर उसे कुछ भी साफ समझ नहीं आया। मामला पेचीदा था और कई बातें उसकी समझ से बाहर थीं। उसने सोचा था कि घर जाकर ज्ञान से बात करेगी, वो उससे सवाल पूछेगी। आज उसने तय कर लिया था कि वो खुद पहल करेगी। ज्ञान कपूर के घर आने से पहले ही न्यारा ने खाना बना लिया था। उसने वही सब्जियां बनाई थीं जो उसे खुद पसंद थीं, वैसी ही जैसी उसकी माँ उसके लिए घर पर बनाया करती थीं। मटर पनीर, आलू गोभी, उसे याद था ज्ञान कहा करता था, तुम जो खाओगी मैं भी वही खाऊंगा। आज उसने उसी बात को पकड़ लिया था। रोटियां भी बनाकर रखती थीं। न्यारा ड्राइंग रूम में अपनी जगह पर बैठी ज्ञान का इंतजार कर रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, जैसे वो किसी अनकहे सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद में बैठी हो। जैसे ही गेट खुला, ज्ञान अंदर आया। न्यारा तुरंत खड़ी हो गई। सर, आइए, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा संकोच था। ज्ञान रुक गया। उसने उसकी तरफ देखा। न्यारा ने उसे इस तरह कभी वेलकम नहीं किया था। ये बदला हुआ अंदाज उसे चौंका गया। सीधी सी बात है, ज्ञान ने सपाट लहजे में कहा, अगर मैं सामने खड़ा हूं तो आ चुका हूं। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। सर, मैंने खाना बना लिया है, न्यारा ने जल्दी से कहा, आप चेंज करके आ जाइए। ज्ञान वहीं रुक गया। उसने धीरे से पलटकर न्यारा की ओर देखा। मैंने तुमसे कहा था, उसने सख्त आवाज में कहा, कि खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक पल रुककर बोला, फिर तुमने क्यों बनाया? न्यारा चुप खड़ी रही। उसके पास जवाब तो थे, मगर शब्द नहीं। सर, मुझे आपसे एक काम है, न्यारा ने हिचकिचाते हुए कहा। ज्ञान कपूर ने उसकी ओर देखा। क्या? उसने पूछा। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी भी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि न्यारा को उससे ऐसा कौन सा काम हो सकता है। आज ऑफिस में जो केस डिस्कस हो रहा था, न्यारा ने धीरे से कहा, उसके बारे में पूछना था, मुझे ठीक से समझ नहीं आया। ज्ञान का चेहरा सख्त हो गया। ये घर है, उसने साफ लहजे में कहा, ऑफिस नहीं, यहाँ काम की बातें नहीं होंगी। उसका जवाब सीधा था और अंतिम भी। न्यारा एक पल के लिए चुप हो गई, फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, प्लीज सर, आप पहले कपड़े बदल लीजिए, खाना खा लीजिए, उसके बाद बात कर लेंगे। ज्ञान कपूर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे की ओर चला गया। कमरे में जाकर उसने कपड़े बदले। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि वो बाहर का खाना ऑर्डर कर लेगा। वो न्यारा के हाथ का खाना नहीं खाना चाहता था, कम से कम खुद को यही समझा रहा था। वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी लिविंग एरिया से आती खाने की खुशबू ने उसके कदम रोक दिए। मटर पनीर, आलू गोभी, ऐसी खुशबू जो भूख से ज्यादा मन को जगाती है। ज्ञान बाहर नहीं आया तो न्यारा को भी भूख लग गई थी। उसने खुद के लिए खाना गर्म करना शुरू कर दिया। एक तरफ कढ़ाई में मटर पनीर चढ़ा दिया, दूसरी तरफ आलू गोभी। रोटियां पहले से बनी हुई थी। जैसे जैसे सब्जियां गर्म होती गईं, पूरी लिविंग एरिया में वो महक फैलती चली गई, घरेलू, सुकून देने वाली, अपनापन भरी। ज्ञान कपूर ने गहरी सांस ली। उसकी भूख सचमुच जाग चुकी थी। आखिरकार वो बाहर आया। अच्छा लाओ, उसने कहा। उसका लहजा नरम नहीं था। वो ऐसे बोल रहा था जैसे खाना खाकर वो न्यारा पर कोई एहसान करने वाला हो। न्यारा ने उसकी तरफ देखा। वो कुछ कहना चाहती थी मगर चुप रह गई, क्योंकि कभी कभी शब्दों से ज्यादा खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। और उस रात खाने की खुशबू के बीच दोनों के बीच की दूरी और भी साफ महसूस होने लगी। उसने भले ही न्यारा के हाथ का खाना खा लिया था, मगर सच ये था कि न्यारा ने कभी कुछ स्पेशल नहीं बनाया था जैसा उसने आज बनाया था। न्यारा ने उसकी टेबल पर मटर पनीर की सब्जी रखी, साथ में हल्का सा सलाद और अचार। वो अचार उसकी माँ के हाथ का बना हुआ था, जो वो अपने साथ घर से लाई थी। वही अचार, वही खुशबू ज्ञान को एक पल के लिए अपने घर की याद दिला गया। वो चुपचाप खाने लगा। कुछ देर बाद उसने सिर उठाकर न्यारा की तरफ देखा। आज कोई पार्टी है क्या, उसने पूछा। उसके सवाल में हैरानी थी, क्योंकि पिछले दिनों में न्यारा ने उसे इस तरह कभी नहीं हिलाया था। या फिर वो थोड़ा रुका, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना था इसलिए। न्यारा के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने दांत दिखाते हुए सिर हिला दिया। हाँ, उसने धीरे से कहा। ज्ञान फिर से खाने लगा। खाना बहुत टेस्टी है, उसने कुछ देर बाद कहा। उसकी आवाज में औपचारिकता नहीं थी, वो सच में तारीफ कर रहा था। न्यारा ने राहत की सांस ली। खाना खत्म होते होते ज्ञान का मूड भी हल्का हो गया था। वैसे भी कहते हैं कि मर्दों के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। शायद ये बात ज्ञान कपूर पर भी लागू हो रही थी। उसने प्लेट साइड में रखी और आराम से सोफे पर बैठ गया। ठीक है, उसने कहा, अब बताओ क्या पूछना है। न्यारा भी सामने आकर बैठ गई। उसके मन में अब भी झिझक थी, मगर ये पहला मौका था जब उसे लगा शायद अब वो उसकी बात सुनेगा। और उस टेस्टी डिनर के बाद न्यारा फाइल लेकर धीरे से उसके पास आकर बैठ गई। उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि वो कब इतनी नजदीक आ गई थी कि दोनों के कंधे लगभग छू रहे थे। सोफे की जगह सीमित थी, मगर उस सीमित जगह में एक अजीब सा सुकून और हल्की सी बेचैनी दोनों मौजूद थे। न्यारा सवाल पूछ रही थी, कभी झिझकते हुए, कभी पूरी एकाग्रता के साथ, और ज्ञान कपूर हर सवाल का जवाब दे रहा था, शांत, स्पष्ट और धैर्य के साथ। वो उसे केस की बारीकियां समझा रहा था, एक एक पॉइंट पर रुककर, जैसे वो सच में चाहता हो कि न्यारा हर चीज अच्छे से समझ ले।
बीच बीच में ऐसा भी होता कि दोनों अनजाने में ही फाइल पर एक ही जगह उंगली रख देते। हर बार ऐसा होने पर न्यारा पल भर के लिए ठिटक जाती और ज्ञान भी एक सेकेंड के लिए रुक जाता। उंगलियों का वो हल्का सा स्पर्श न बहुत ज्यादा न पूरी तरह अनदेखा करने लायक। दोनों बिना कुछ कहे अपनी उंगलियां हटा लेते, मगर उस छोटे से पल की गूंज देर तक माहौल में बनी रहती। कागज पलटते गए, सवाल जवाब चलते गए और वक्त का एहसास ही नहीं रहा। जब पूरा काम खत्म हुआ तो न्यारा की आंखों में संतोष छलकने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। थैंक यू सर, उसने दिल से कहा। आज उसकी जो भी प्रॉब्लम थी, जो उलझने उसे दिन भर परेशान कर रही थीं, सब लगभग सॉल्व हो चुकी थीं। ज्ञान ने फाइल बंद की और हल्की सी नज़र उसकी तरफ उठाई। अब समझ में आ गया, उसने पूछा। न्यारा ने सिर हिलाया, हाँ, बहुत अच्छे से। उस पल में न्यारा को एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक केस नहीं सुलझा रही थी, वो धीरे धीरे उस इंसान को भी समझने लगी थी जो हर वक्त खुद को कठोर बनाए रखता था।